राम कबीर। सदगुरु श्री जीवन जी महाराज मेमोरियल फाउंडेशन प्रस्तुत करता है प्रेम जीवन स्वामी द्वारा लिखित गद्य निबंध जीवन जी की ऑडियो सीडी सौजन्य। श्रीमती लताबेन ईश्वर भाई तथा ईश्वर भाई वृंदावन भाई भगत तथा परिवार मूल निवासी छतराली हाल अमेरिका की ओर से राम कबीर उदा भक्त समाज के नए वंश को आशीर्वाद सप्रेम अर्पण। ऑडियो रिकॉर्डिंग निर्मल भगत। स्वर मनोज राणा। ट्रैक सेटिंग अपूर्व स्वामी।
प्रकरण एक जीवन चरित्र।
रामानंदी संप्रदाय मा उदा जीवन दास कुल कर्म करणी तजी करी राम चरण की।
काशी के प्रसिद्ध संत रामानंदाचार्य की शिष्य परंपरा में सदगुरु श्री जीवन जी महाराज आते हैं। जीवन जी महाराज ने गुजरात के चोरंदा निवासी कबीर परंपरा के अनुयायी गोपाल दास जी से कंठी दीक्षा धारण करके कबीर परंपरा में प्रवेश किया। जीवन जी महाराज के जन्म संबंधी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो कुछ छूट मूट जानकारी है उनके आधार पर उनका जन्म गुजरात के करमसद नामक गांव में 1593 में हुआ था। उनका जन्म लेउवा पाटीदार अमीन परिवार में हुआ था। भाग्यवश जीवन जी महाराज के माता पिता का निधन उनकी बाल्यावस्था में ही हो गया था। ये दुखद घटना से व्यथित होकर 11 साल की आयु में वर्ष 1604 में गृह त्याग करके बड़ौदा के पास गाहेज गोरियाद नामक गांव में आ गए और वहां किसी साधु मंडली में शामिल हो गए। वहां से एक नए जीवन की शुरुआत हुई। ईश्वर को प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई जो आगे जाकर कबीर परंपरा तक खींच लाई। अपनी बाल्यावस्था में ही अध्यात्म के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न हो गई और परमात्मा का साक्षात्कार करने की इच्छा दिन प्रतिदिन प्रबल बनती गई। साधु मंडली के साथ गुजरात में भ्रमण करते करते 1609 में कैसलू नामक एक गांव में जा पहुंचे। वहां कबीर परंपरा के संत गोपाल दास जी से मुलाकात हुई। इसी वक्त जीवन जी महाराज की आयु केवल 16 साल की थी। ये प्रथम मुलाकात थी, मगर इसी समय जीवन जी महाराज अपने लिए कोई रास्ता न चुन सके। एक बात हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उस मुलाकात के बाद जीवन जी महाराज के मन में विचार मंथन की एक धारा शुरू हो चुकी थी। समय बढ़ता गया, मन की उलझन वैसे ही बढ़ती गई। उसी दौरान एक अनोखी घटना घटी। ढाढर नदी के किनारे बसे हुए छोटे से गांव के एक वृद्ध सज्जन से उनकी मुलाकात हो गई। ये वृद्ध सज्जन का नाम था संत गोपाल दास। संत गोपाल दास जी ने जीवन जी महाराज को सलाह दी कि यदि सच्चे रूप में धर्म, ईश्वर, अध्यात्म जानने की इच्छा है तो चोरंदा निवासी राम कबीर परंपरा के संत गोपाल दास जी से पुनः मुलाकात कर लो और उनकी शरण में चले जाओ। 1627 में आसो सूद 13 के दिन जीवन जी महाराज चोरंदा आ पहुंचे और गहन चर्चा की। कई विविध विषय पर चर्चा विचारणा हुई और अपने मन में उद्भवित प्रश्नों के बारे में भी चर्चा की। इस चर्चा से संतुष्ट होकर शरद पूर्णिमा के दिन गोपाल दास जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करके सदगुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। जीवन जी महाराज ने धर्म संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए गुरु के शरण में 4 साल चोरंदा में बिता दिए। 4 साल बाद भारत में भयंकर अकाल पड़ा। गोपालदास जी ने गुजरात छोड़ने का निर्णय लिया और अपने साथ जीवन जी महाराज को भी ले गए। दोनों गुजरात छोड़कर राजस्थान के मालवा प्रदेश के चंदेरिया गांव में जा पहुंचे। वहां कुछ दिन ठहरने के बाद दोनों ने अलग अलग दिन गांव छोड़ दिया और गोपालदास जी वहां से निकलकर उज्जैन जा पहुंचे। वहां एक दिन गोपालदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया और स्वधाम गमन कर गए। जीवन जी महाराज को यह खबर मिली तो वहां फौरन चले आए और गुरु जी की अंतिम क्रिया निपटाकर अकेले जगन्नाथ की ओर चल पड़े। जगन्नाथपुरी से आगे चित्रकूट, काशी, अयोध्या जैसे स्थानों की मुलाकात करके हिमालय के दंतनगर जा पहुंचे। दंतनगर में जीवन जी महाराज भाव समाधि में जा पहुंचे और नीरव शांति का अनुभव किया। मगर भारत यात्रा के दौरान देखी गई लोगों की जिंदगियां उजागर होने लगी और एक आवाज सुनाई दी, यहां से वापस जा, लोग तेरा इंतजार करते हैं। नई शक्ति और विचार लेकर जीवन जी महाराज हिमालय से वृंदावन आ गए। वृंदावन में हित हरिराम व्यास जी से मुलाकात हुई। दोनों के बीच में लंबी चर्चा के बाद व्यास जी ने कबूल किया कि आज मेरी सारी शंकाओं का समाधान मिल गया। वहां से उत्तर प्रदेश के बरेली नामक गांव में जीवन जी महाराज की मुलाकात वहां के एक व्यापारी नारायणदास खत्री से हो गई। कई सालों से व्यापारी नारायणदास अपने संशयों के साथ जीवन गुजारता जा रहा था। समाधान नहीं मिलने के कारण वो बड़ा दुखी था। जीवन जी महाराज ने उनका समाधान कर दिया। उनसे प्रभावित होकर नारायणदास ने फौरन फैसला कर लिया कि अब जहां गुरु जीवन जी महाराज जाएंगे वहां ही उनके निकट सानिध्य में रहेंगे और परिवार के साथ बरेली से चल पड़े। नारायणदास का परिवार जीवन जी महाराज के साथ चलते चलते राजस्थान के चंदेरिया गांव आ पहुंचा। वहां भी बहुत सारे लोग इंतजार में थे। वहां कुछ दिन रुके, सत्संग वार्तालाप किया तो चंदेरिया के कुछ परिवारों ने निर्णय लिया कि नारायणदास की राह पर चल के हम भी परिवार के साथ गुरु निश्रा में रहेंगे। वहां से 9 परिवार और शामिल हो गए और सबने गुजरात की राह पकड़ ली। चलते चलते भक्त मंडली गुजरात की ढाढ़र नदी के किनारे शाहपुरा गांव आ गए। भक्त मंडली शाहपुरा आ गई। रास्ते में समियाला, वड़सर, धनियावी के कुछ लोग भी साथ में जुड़ गए। 1627 में शरद पूर्णिमा के दिन सारी संत मंडलियों के साथ सहकार से जीवन जी महाराज ने उदा भक्त राम कबीर परंपरा की स्थापना की। नए जीवन की ओर नए युग का वो प्रारंभ था और उदा भक्त राम कबीर परंपरा के इतिहास का वो अमर दिन था। विविध जाति, ज्ञाति और धर्म से आने वाले सभी ने अपने लिए एक नई पहचान बना ली थी। वो थी उदा भगत। कोई खत्री था, कोई मारवाड़ी, कोई राजपूत, कोई बनिया, कोई ब्राह्मण। अब सबकी जाति धर्म की पहचान एक उदा भक्त की ही थी। राम कबीर का उच्चारण था। ब्राह्मण, पुरोहितवाद से रहित, वेद कर्मकांड रहित जीवन जीने की अनोखी नई जीवन शैली सबने अपना ली थी। जीवन जी महाराज ने नई चेतना जगाई और सभी के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया। इतर समाज अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंडवाद के भीतर जी रहे थे। उनसे विपरीत एक नई दिशा का ज्ञान सबको बताया। जीवन जी महाराज ने कहा कि केवल चार भक्ति पदार्थ को धारण करो, तिलक, तुलसी, राम नाम और संत संगत। और आगे ये भी कहा कि हमारी शक्तियों को क्षीण करने वाली और अंधश्रद्धा की ओर ले जाने वाली उन सभी चीजों को फौरन त्याग दो, क्योंकि ये हमारी शक्तियों को अवरोध रही है और ईश्वर प्राप्ति के लिए उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तप नहीं, तीर्थ नहीं, व्रत नहीं, योग नहीं, जागरण नहीं, मान्यता नहीं, अर्घ्य नहीं, वेद अध्यापन नहीं, होम नहीं, यज्ञ नहीं, क्रिया कर्मकांड नहीं, षट दर्शन नहीं और लग्न मुहूर्त बिना। जीवन जी महाराज का उपदेश सरल और सहज भाषा में था, इसलिए आम लोगों की समझ में आता रहा। धीरे धीरे आसपास से और भी लोग आते रहे और जुड़ते रहे। गुरु गोपालदास जी की आज्ञा से जीवन जी महाराज ने राजपूत कन्या हरमाबा से विवाह किया और अपने परिवार के साथ शाहपुरा गांव में निवास किया। जीवन जी महाराज का स्पष्ट मानना था कि अपनी आजीविका खुद प्राप्त करनी चाहिए। शाहपुरा गांव में जीवन जी महाराज खेती का काम करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। जीवन जी महाराज को 5 संतान हुए। सबसे ज्येष्ठ पुत्र नारणदास उर्फ वसंतदास पिताजी की आज्ञा से केशवदास सोनी के साथ सूरत खांगड़ शेरी में जाकर बस गए और वहां से आसपास के गांव में राम कबीर परंपरा का प्रचार किया। द्वितीय पुत्र श्यामदास जी जीवन जी महाराज के सानिध्य में रहे। तीसरे पुत्र हरक जी थे, वो बाबा काका के नाम से प्रसिद्ध हुए और वो नाना अमादरा नामक गांव में जाकर बस गए। वहां उनकी समाधि भी है। चौथे पुत्र गोविंद दास जी थे, वो दाजी काका नाम से पहचाने जाते हैं और तांदलजा गांव में निवास करते थे। अंतिम 5वें पुत्र अक्षय दास जी थे। दुर्भाग्यवश हमारे पास अक्षय दास जी के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, मगर लोक कथा के अनुसार ये कुकश नामक गांव में निवास करते थे ऐसा कहा जाता है, मगर वहां उनकी यादगिरी की कोई निशानी हाल मौजूद नहीं है। जीवन जी महाराज का बड़ा सिद्धांत था कि किसी भी भक्त के पास से धन संपत्ति की याचना नहीं करनी चाहिए। हमेशा वो कहते थे कि जा सिर कर जीवन धरो, ता तल कर ओढ़ो नहीं, अर्थात आशीर्वाद देने के लिए जिनके सिर माथे पर हाथ रखा है उनके सामने मैं अपनी आजीविका के लिए कभी हाथ फैलाऊंगा नहीं। जीवन जी महाराज संसारी थे और अपने भक्तों को भी संसारी बनाया, किसी को संसार नहीं छोड़ाया और सबको आजीविका के लिए खेती करने का आदेश दिया। इसी कारण अलग अलग प्रदेश से आए भक्तजन जीवन जी महाराज के निकट जमीन जागीर खरीदकर खेती करने लगे। अपने संप्रदाय में ना कोई मंदिर बनाया और ना ही कोई पुजारी। जीवन के कुछ अंतिम वर्षों में जीवन जी महाराज को द्वारिका की यात्रा करने का मन हुआ। 1672 की साल में 79 वर्ष की उम्र में कुछ निज भक्तों और अपने द्वितीय पुत्र श्यामदास जी के साथ सत्संग करते करते द्वारिका की ओर प्रयाण किया। भक्ति यात्रा के दौरान भक्तजनों को खूब आनंद आया और जीवन जी महाराज ने द्वारिका यात्रा का महात्म्य भी समझाया। द्वारिका से वापस आकर एक दो साल ऐसे गुजर गए कि जीवन जी महाराज की कीर्ति आस पास के गांव में फैलती गई। एक बार जीवन जी महाराज अपने गुरु गोपालदास जी के निवास स्थल चोरंदा जा रहे थे। शाहपुरा के रास्ते में पुनियाद गांव आता था, यहां विश्राम के लिए रुके थे। वहां एक ऐसी घटना घटी, उससे प्रभावित होकर गांव वालों ने जीवन जी महाराज को बहुत आग्रह किया कि अब यहां पुनियाद गांव को ही अपना निवास स्थान बनाए और सदा के लिए यहां बस जाए। बहुत आग्रह होने के कारण जीवन जी महाराज इनकार नहीं कर सके और आखिरकार शाहपुरा को छोड़कर पुनियाद में बस गए। 1644 में ईडर में ब्राह्मण परिवार में जन्मे कृष्णदास दवे भक्ति की खोज में जीवन जी महाराज को मिलने के लिए पुनियाद आते हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण कृष्णदास दवे और जीवन जी महाराज की मुलाकात बहुत ही फलदायी रही। जीवन जी महाराज से प्रभावित होकर कंठी दीक्षा धारण करके कृष्णदास दवे अनीन वैष्णव बन गए और बाद में महसाणा विस्तार में उदा भक्त राम कबीर परंपरा का प्रचार किया। उनके प्रभाव से कई लोगों ने कंठी दीक्षा ग्रहण करके उदा अनीन परंपरा का स्वीकार किया। कृष्णदास कहते हैं कि अब मैं अनिन व्रत लियो, काहू को बर्तन न जाय छुयो, तो साकुट अन्न लियो न जाई, कैसे भोग लगाऊ भाई। अतः कृष्णदास जी ने महसाणा में उदा अनिन धर्म का प्रचार किया और समाज स्थापित किया। 1737 में कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी के दिन उपस्थित भक्तजनों के साथ कृष्ण जन्म का महोत्सव पूर्ण करके सभी उपस्थित भक्तजनों को शुभेच्छा शुभकामनाएं प्रदान करके भक्तजनों से विदाई लेकर जीवन जी महाराज 88 वर्ष की आयु में स्वधाम पधारे। राम कबीर, ये राम कबीर का उच्चारण क्यों? सबसे प्रथम ये प्रश्न उद्भवित होना बिल्कुल यथार्थ है और हमारा ये फर्ज बनता है कि ये प्रश्न का सही ढंग से जवाब दिया जाए। राम, ये नाम भारत में बहुत प्रचलित है क्योंकि राम हमारे आराध्य देवता का नाम है। राम भगवान है, पूजनीय है, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में राम के अनेक मंदिर है। राम के बारे में विश्व भर में अनेक किताबें लिखी गई है। राम का नाम विश्व प्रसिद्ध है। कबीर एक संत पुरुष का नाम है जो काशी में पैदा हुआ था। जन्म से माता ने छोड़ दिया था और वो अनाथ हो गया। अनाथ, गरीब, अछूत, जुलाहा, बंडखोर, मुस्लिम, बुनकर, ऐसी बहुत सारी उनकी पहचान है। कबीर की तुलना में राम कई ज्यादा प्रसिद्ध है और विश्व के सारे हिंदुओं के पूज्य देवता भी है। यहां ऊपर के दो शब्दों का मिलन हो गया है और राम कबीर ऐसा एक अनोखा शब्द बन गया। राम कबीर शब्द की परिभाषा समझनी बड़ी आवश्यक है। यहां राम और कबीर दो अलग अलग नाम को एक साथ जोड़ दिया गया है। राम कबीर शब्द का सर्वप्रथम उच्चारण कबीरवड़ नामक स्थान पर जैसलमेर के राजपूत राजकुंवर चतुर सिंह, जो बाद में संत ज्ञानी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके द्वारा किया गया था। कबीरवड़ गुजरात के भरूच जिले में नर्मदा नदी के बीच में आया हुआ स्थान है। इसी स्थान पर नदी के बीच में एक हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, वहां वड का बड़ा वृक्ष है। उसी स्थान में मूल जैसलमेर राज्य के कुंवर चतुर सिंह घर संसार को छोड़कर भक्ति साधना करते थे। एक दिन गुजरात यात्रा के दौरान कबीर जी से भेंट हो गई। कबीर जी का दर्शन करते समय चतुर सिंह आश्चर्यचकित रह गए। लोग बाबा कबीर को कबीर कबीर नाम से पुकारते थे, मगर चतुर सिंह को कबीर में साक्षात राम का दर्शन हुआ। ये उनका भ्रम नहीं था, परंतु साक्षात्कार था। और अनायास चतुर सिंह के मुख से राम कबीर शब्द का उच्चारण निकल पड़ा। उसी क्षण चतुर सिंह ने कबीर को पूछ लिया, बाबा आप कौन हो? नहीं बाबा, मेरी जिज्ञासा का उत्तर दीजिए।
इस काया को कबीर कहते हैं।
मैं काया की बात नहीं करता हूं, आपके भीतर क्या है मैं उसे जानना चाहता हूं।
मेरे भीतर में उस परमात्मा का अंश है जो तेरे भीतर भी है।
बाबा आपके भीतर मुझे राम क्यों दिखाई पड़ता है?
चतुर सिंह, तुम्हारे भीतर भी वही राम विराजमान है, बस शुद्ध जल की भांति पवित्र हो जाओ, आपका राम भी दिखाई देगा।
और इसी संवाद ने दुनिया में इतिहास खड़ा कर दिया। नई परंपरा, नई सोच, ईश्वर के प्रति पूजा, उपासना, रीति रिवाज, संस्कार की नई व्याख्या उसी स्थान के कारण संभवित हुई। गुजरात में और गुजरात के बाहर राम कबीर शब्द प्रचलित हुआ। यहां दो शब्दों का अद्भुत मिलन हुआ है। उनका मतलब यही है कि हम ईश्वर राम और मानव कबीर में कोई भेद के रूप में नहीं देखते हैं। ईश्वर और मानव एक ही स्वरूप है। राम को समझाने वाला अथवा राम की भक्ति करने का पंथ दिखाने वाला कबीर स्वयं राममय है, इसलिए हम राम कबीर शब्द का प्रयोग करते हैं। कबीर जी ने बताया है कि वो ही राम सबके भीतर बसते हैं, बस आपका अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगा तो आपके भीतर बैठा राम अपने आप दिखाई देगा। धर्म बाह्याचार का नहीं है, धर्म शुद्ध आचरण का है। सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने आचरण का महत्व समझाया है, क्योंकि कबीर का धर्म शरीर शुद्धि आचरण का था, पवित्र विचार का था। इसी कारण चतुर सिंह को कबीर में राम दिखाई दिया। कबीर कहते हैं कि मन मेरा निर्मल भया, जैसे चोखा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा भीतरी मन शुद्ध और पवित्र बनाने की जरूरत है, और वो ही सच्चा धर्म है, नहीं कि होम हवन और कर्मकांड। ये सब तो बाह्य क्रियाएं हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। राम कबीर का नाम हम इसलिए लेते हैं कि परम राम उपासक कबीर राम का स्मरण भजन कीर्तन करते करते इतने शुद्ध और पवित्र हो गए थे कि उनके भीतर का राम और कबीर दोनों में कोई अंतर नहीं बचा था, वो एक हो गए थे। इसलिए राम कबीर एक ही शब्द है। जहां मैं और तुम ऐसा द्वितत्व का भाव खत्म हो जाता है और एकत्व का भाव यानी एकमेकत्व प्रकट होता है, तब शरीर भाव नष्ट हो जाता है और आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। राम कबीर शब्द एकमेकत्व का भाव प्रकट करता है। सद्गुरु श्री जीवन जी महाराज ने यही भाव दशा को समझाने के लिए एक संकलित ग्रंथ लिखा है, नाम रूपनो मेड। सद्गुरु श्री जीवन जी महाराज मेमोरियल फाउंडेशन ने दल भीतर देदार नाम से 2016 में उस ग्रंथ को गुजराती भाषांतर के साथ प्रकट किया है। जिन जिज्ञासु को विशेष ज्ञान प्राप्त करना है वो उनका अभ्यास कर सकते हैं।
हमारा संस्कार क्या कहता है?
दुनिया में जितने भी धर्म संप्रदाय है उसका कोई ना कोई विशेष नियम और सिद्धांत रहा है। इसी तरह हमारे भी कुछ सिद्धांत और संस्कार है। हालांकि आज की पृष्ठभूमि में तलाशा जाए तो उनमें से बहुत कुछ भूले जा चुके हैं। कुछ संस्कार में अपने आप बदलाव आ गया है और कुछ यथावत है। सत्य तो यही है कि आज की युवा पीढ़ी को उस सिद्धांत और संस्कार से हम अवगत नहीं करा पाए हैं। इसी कारण आने वाली पीढ़ी इससे अनजान है। हमारे संस्कार चार है, तिलक, तुलसी, राम नाम और संत संगत। कपाल पे गोपी चंदन का तिलक, गले में तुलसी माला। हर किसी सदस्य का संबोधन सबसे पहले केवल राम कबीर से करना और हमारे धर्म के प्रमुख आध्यात्मिक स्थान को सकल नामदेव कबीर का पड़थारा कहते हैं। वहां आना जाना और सत्संग वार्ता महोत्सव में हिस्सा लेना हमारी धार्मिक जिम्मेदारी है। हमारे प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो सद्गुरु श्री जीवन जी महाराज ने हमें सबसे पहले अपनी अलग पहचान दी है। उसे कहते हैं उदा। उदा हमारी जात है। विभिन्न संप्रदाय धर्मों को छोड़कर जीवन जी महाराज के एक छत्र तले एकत्रित हुआ समूह उदा है। उस उदा पंथियों का महत्वपूर्ण सिद्धांत आचार और विचार शुद्धि का है। सर्वप्रथम वाणी शुद्धि। वाणी शुद्धि के लिए जीवन जी महाराज ने हमें कुछ पारिवारिक शब्द दिए हैं, जैसे कि पानी के बदले जल शब्द प्रयोग, खावू अथवा खाना शब्द के बदले भोजन प्रसाद शब्द का प्रयोग करना, कुछ रेसिपियों के नाम बदल दिए हैं जैसे श्याम भोगी। वाणी की पवित्रता बरकरार रखने के लिए व्यसन रहित होना जरूरी है और व्यसन रहित समाज भी बनाया। तंबाकू, मदिरा, मांस, मच्छी इत्यादि का त्याग करवाया। सामाजिक प्रसंगों में भारी बदलाव जीवन जी महाराज ने कर दिए। क्रिया कर्मकांड का सदंतर बहिष्कार कर दिया। ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा होती पूजा पाठ का त्याग कर दिया। उनका स्थान केवल भजन कीर्तन और सत्संग वार्तालाप ने ले लिया। शादी ब्याह जैसे प्रसंगों की विधि को शुद्ध गुजराती भाषा में बदल दिया और पंडित पुरोहितों का स्थान छीनकर सभी उदा धर्मियों को एक समान बनाया। बेबी शावर जैसे प्रसंगों को बिल्कुल सरलता प्रदान की गई। मृत्यु जैसा प्रसंग इतर समाज और संप्रदायों में शोक का कारण था। रोना, कूटना, सूतक लगना जैसी बदी को दूर करके मृत्यु को नया नाम दिया स्वधाम गमन। न शोक, न रोना, न कुटना, सब बंद। मृत्यु के पीछे होने वाली विधियों का भी त्याग करवा दिया। मृत शरीर को बांधकर स्मशान ले जाने के बदले पालकी में बिठाकर ले जाने की प्रथा प्रचलित की गई। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि समान अधिकार। जाति लिंग भेद दूर करके सभी उदा भक्त के लिए समान अधिकार दिए, चाहे वे सामाजिक हो, धार्मिक हो या कौटुंबिक हो। यहां स्त्री पुरुष का भेद मिटा दिया। और खास महत्वपूर्ण बदलाव देखा जाए तो स्त्रियों को सम्मान मिला। उनके लिए कलंकपूर्ण प्रथा रजस्वला को दूर कर दिया। स्त्रियों को किसी भी अवस्था में ईश्वर की पूजा अर्चना करने का अधिकार जीवन जी महाराज ने प्रदान किया। सामाजिक कार्यों में उनका स्थान सम्माननीय रखा। जीवन जी महाराज ने जो जो सिद्धांत समाज को प्रदान किए, उनके पीछे उनकी गहन सोच और समझ थी। उनके साथ जीवन जी महाराज ने बहुत सारी अंधश्रद्धा और दंभी उपासनाओं का भी त्याग करने का आदेश दिया। तप नहीं, तीर्थ नहीं, व्रत नहीं, योग नहीं, जागरण नहीं, मौन मान्यता नहीं, अर्घ्य नहीं, वेद अध्यापन नहीं, होम नहीं, यज्ञ नहीं, क्रिया कर्म कांड नहीं, षट दर्शन नहीं, षट नास्तिक दर्शन नहीं और मूरत भी नहीं। ये 14 अंधश्रद्धा के प्रतीक थे। उन क्रियाओं से केवल अंधविश्वास पैदा होता था। वो सब छोड़ने का आदेश मिला। और अंत में जीवन जी महाराज ने कहा कि जो कुतली खोर है वो साकुट है, जो अंधश्रद्धावान है हर हमेश बाह्य क्रिया कर्म कांड में रत रहता है, ऐसे व्यक्ति का संग ना करें। हमारे त्योहार। संसार में सभी मनुष्य किसी न किसी त्योहार उत्सव को मनाते हैं, क्योंकि मनुष्य जाति को उत्सव बहुत प्रिय है। दुनिया के हर हिस्से में समय समय पर कोई न कोई उत्सव होते ही रहते हैं। उदाभक्त राम कबीर परंपरा में भी हम सब साथ मिलकर उत्सवों का आनंद लेते रहते हैं। हमारा सबसे प्रथम उत्सव है गोवर्धन समो। हमारे नए वर्ष का प्रथम दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत का प्रथम दिन यानी कार्तिक सूद एकम है। उसी दिन को हम गोवर्धन समो के नाम से जानते हैं। इस दिन को बड़े आनंद और उत्साह से मनाते हैं। सुबह सुबह में प्रातः निद्रा से उठकर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं शुभेच्छाएं प्रदान करते हैं। खुशियां बांटने के लिए प्रसाद भी देते हैं। विशेष रूप से उदाभक्त समाज उसी दिन अच्छव कीर्तन करते हैं और खास तौर पर वैष्णव संत कवियों द्वारा रचित पदों का विशेष गान करते हैं। ये पदों का संग्रह उदाधर्म पंचरत्न माला नामक पुस्तक में पृष्ठ नंबर 406 पर दिया गया है। कहते हैं कि वर्षा ऋतु पूर्ण हो गई थी और श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों के पास गोवर्धन पूजा करवाई थी। उसी याद में सारे वैष्णव भक्त इस दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं। और हम सब उदा भक्त बाह्य पूजा नहीं करते हैं, परंतु आंतरिक पूजा के स्वरूप कीर्तन और भक्ति करते हैं और समूह में अच्छव कीर्तन करते हैं। वसंतोत्सव। हमारा कैलेंडर 12 महीने और 6 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। प्रथम ऋतु शिशिर, कार्तिक और माक्षर, ये 2 महीनों के दरमियान मानी जाती है। दूसरी हिम, पोष और माह के दरमियान। और तीसरी ऋतु है वसंत, ये ऋतु चैत्र और वैशाख के दरमियान आती है। इसी वसंत ऋतु को विशेष महत्व दिया गया है। ये ऋतु प्रेम और आनंद की ऋतु है। प्रकृति चारों ओर खिली हुई नजर आती है। उदाभक्त समाज इसी 2 महीनों के दरमियान विशेष पद रचनाएं जो वसंत ऋतु पर लिखी गई है उसी का गान करता है। ये सारी रचनाएं उदाधर्म पंचरत्न माला पुस्तक के पृष्ठ नंबर 416 पर दी गई है। वसंत उत्सव रंग और उत्साह का त्योहार है, मगर हमारे सद्गुरु कबीर जी ने रंग और उत्साह के बाह्य रूप से विपरीत आंतरिक रंग मनाने की सीख देते हुए पद लिखे हैं। दूसरी तरफ परमानंद, प्रेमानंद, सूरदास, नरसिंह मेहता इत्यादि संत कवियों ने सगुण वसंत के पद लिखे हैं और हम निर्गुण और सगुण दोनों पदों का आनंद लेते हैं। हिंडोलोत्सव। बरसात की रिमझिम मौसम का ये उत्सव अनोखा है। व्रजकुल में श्री कृष्ण गोपियों और राधा जी के संग में जो गौ चराते चराते लीला करते थे, उन भावों को दर्शाने वाले पदों का गान करने का आनंद ही बड़ा अनूठा है। सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने वर्षा ऋतु का आनंद लेते हुए कई साखियों की रचना की है, जो हमें उदाधर्म पंचरत्न माला के पृष्ठ नंबर 480 पर मिलती है। शरदोत्सव। वर्ष के इस अंतिम महोत्सव का स्थान बहुत बड़ा बताया गया है। बरसात के दिन लगभग विदा ले चुके होते हैं, खेतों में नई फसल तैयार हो जाती है अथवा पक कर घर पर आ गई होती है। लोगों के मन खुशियों से भर जाते हैं। इसका आनंद बहुत बड़ा होता है, क्योंकि साल भर का अनाज घर में आ गया है। श्री कृष्ण ने उसी आनंद को व्यक्त करने के लिए व्रजभूमि में वृंदावन स्थित रासलीला का आयोजन किया था। सारी गोपियां खुशी खुशी रासलीला में शामिल हुई थी। इस रास के बारे में बहुत सारा साहित्य लिखा गया है और आने वाले समय में भी लिखा जाएगा। भक्तों और कवियों की विशेष रुचि इसी ऋतु के पद लिखने पर रही है। व्रजभूमि में शरदोत्सव के दिनों में बड़े बड़े महोत्सव का आयोजन होता है। चोरंदा गांव में विक्रम संवत 1683 में शरदोत्सव के आयोजन पर उपस्थित होकर सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने गोपालदास जी के चरणों में प्रणाम करके अपने गुरु के रूप में स्वीकार लिया था और 5 साल बाद उदाधर्म राम कबीर परंपरा की स्थापना शरद पूर्णिमा के दिन शाहपुरा में की थी। इसी कारण हमारे लिए शरदोत्सव का महत्व बहुत बड़ा है। राम जन्म महोत्सव। चैत्र सुद नवमी के दिन भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे कई स्थानों पर राम भक्तों द्वारा राम जन्म महोत्सव मनाया जाता है। उदा भक्त राम जन्म महोत्सव को कृपानाथ महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि राम हमारे आराध्य है और वे कृपा करते हैं। उसी दिन को राम नवमी भी कहते हैं। सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने हमें आदेश देते हुए कहा था कि ये कृपानाथ का महोत्सव है, तो उसी दिन पुण्याद सकल नामदेव का पर्थारा ऊपर आमंत्रण मिले या न मिले, मैं आज सभी भक्तों को आमंत्रण दे देता हूं कि आमंत्रण की राह देखे बगैर जो भी थाल प्रसाद मिले उसे लेकर पहुंच जाना। हमारे संप्रदाय की स्थापना से लेकर आज तक कभी किसी को कोई भी प्रकार का निमंत्रण यहां से किसी को भेजा गया नहीं है, मगर पूरा समाज उसी दिन एकत्रित होकर महोत्सव का आनंद लेता है। जानकी जी जन्मोत्सव। ये त्योहार गौण त्योहार है, सीता जी के जन्मदिन का उत्सव है। जानकी जी जन्मोत्सव फाल्गुन सूद अष्टमी के दिन मनाया जाता है। उत्तर भारत में उस दिन को सीता अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। अपने समाज में सीता अष्टमी महोत्सव मनाने की परंपरा कई सालों से बंद हो गई है। सामान्यतः कहा जाए तो समाज में उसका प्रचार बिल्कुल भी नहीं है और ये दिन कब आया और कब चला गया कोई जानता ही नहीं है। सीता जी के बारे में कहा जाए तो वे श्री राम की धर्मपत्नी के रूप में जानी जाती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी। श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता। भारत में उनकी पूजा बड़े आदर से की जाती है। श्रावण वद अष्टमी के दिन कृष्ण का जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है और विश्व भर में फैले कृष्ण प्रेमी भक्तजन इसी दिन को बड़े धामधूम से मनाते हैं। सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम और कृष्ण दोनों को कृपानाथ कहा है और खास आदेश में ये भी कहा है कि दल यानी निमंत्रण की राह देखे बिना ही गुरुद्वार पर जाकर उस महोत्सव में शामिल हो जाना। राम और कृष्ण को हम परमात्मा का एक रूप है ऐसा मानते हैं। राम और कृष्ण दो अलग अलग नहीं हैं, एक ही ईश्वर के दो नाम हैं। समापांचम। हमारे सद्गुरु और उदाधर्म राम कबीर परंपरा के स्थापक दीर्घ दृष्टा सद्गुरु श्री जीवन जी महाराज के स्वधाम गमन के रूप में हम सब ये उत्सव मनाते हैं। भारतीय कैलेंडर में उसे ऋषि पंचमी भी कहते हैं। उदाभक्त समाज समापंचम के रूप में सद्गुरु श्री जीवन जी महाराज को याद करते हैं। विशेषतः हरिदास नड़ियादा लिखित समागम ग्रंथ के अंतिम प्रकरण का पाठ करने का रिवाज है। हर गांव में पड़थारा के स्थान पर यह पाठ किया जाता है। हमारे लिए उससे भी अधिक महत्व इस बात का है कि 1678 में जीवन जी महाराज ने समापंचम के दिन भारतीय कैलेंडर के अनुसार संवत 1734 अषाढ़ सूद दूज के दिन स्त्रियों को रजस्वला नामक कलंक से मुक्ति दिलाई और कहा कि समापंचम के शुभ अवसर पर सुखड़ी का प्रसाद बांटो, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। बस इसी दिन से उदाभक्त समाज समापंचम का त्योहार बड़े उत्साह से मनाते हैं। राधा अष्टमी। ब्रिजवासी कृष्ण प्यारी श्री राधा जी का जन्म महोत्सव सारा उदाभक्त समाज पड़थारा के स्थान पर एकत्रित होकर राधा जी के ऊपर लिखे गए पदों का गान करके मनाता है। उदाधर्म निर्गुण परंपरा का उपासक है, इसलिए हमारे सभी त्योहार भजन कीर्तन अथवा औच्छव से शुरू होते हैं। यहां किसी भी प्रकार के बाह्याचार अथवा आडंबर को कोई स्थान नहीं है। हर महोत्सव में केवल सुखड़ी का प्रसाद बांटते हैं।